प्रमेय का प्रकरण वर्तमान में चल रहा है, तो 12 प्रमेय होते हैं ऐसा शुरू में बताया गया कि आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। इन 12 प्रमेयों में से आत्मा नाम का जो प्रमेय है उसका निरूपण किया गया। अब आत्मा के बाद दूसरा नंबर आता है शरीर का, तो दूसरे नंबर का जो शरीर नाम का प्रमेय है उसका विवरण जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले शरीर का लक्षण बता रहे हैं कि शरीर किसे कहते हैं, तो तस्य भोगायतनम अंत्यावयवी शरीरम। यहाँ पर जो तस्य है, इस तस्य से आत्मा को पकड़ना है। तस्य माने आत्मनः, कि आत्मा के भोग का जो आयतन हो और जो अंत्यावयवी हो वह शरीर होता है। शरीर के लिए दो चीजों को आवश्यक बताया, शरीर कहलाने के लिए, कि जो आत्मा का भोगायतन हो और जो अंत्यावयवी हो उसे हम शरीर कहते हैं। अब यहाँ पर हमें समझना है कि ये भोगायतन क्या है। तो भोग के बारे में मैंने बताया था कि जैसे सुख का भोग, दुख का भोग, तो सुख दुख भोग जो आत्मा करती है, उस आत्मा का जो सुख दुख भोग है उसका जो आयतन है, आयतन का अर्थ करना है आश्रय, आधार। तो आत्मा के दुख सुख के भोग का जो आश्रय हो वह आश्रय कौन होगा, वह आश्रय शरीर होगा। क्योंकि शरीर अगर न हो तो आत्मा जो है सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो शरीर ही जो है वह आत्मा के दुख सुख भोग का आश्रय होता है। इसलिए कहा तस्य भोगायतनम शरीरम, आत्मा के दुख सुख भोग का आयतन शरीर होता है, अर्थात सुख दुख भोग का आश्रय शरीर होता है। अब एक दूसरा जो बताया लक्षण वह है अंत्यावयवी। शरीर जो है वह अंत्यावयवी होता है। अंत्यावयवी का तात्पर्य क्या है, इसको समझिए कि जो किसी का अवयव न हो, केवल अवयवी ही हो, उसको हम कहते हैं अंत्यावयवी। फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर संस्कृत में सुनना चाहें तो सुन लीजिए। यह कस्यचित अवयवो नास्ति, यह कस्यचित अवयवो नास्ति, केवलः अवयवी एव अस्ति, सः अंत्यावयवी उच्यते। फिर से एक बार बोलता हूँ, यह कस्यचित अवयवो नास्ति, केवलः अवयवी एव अस्ति, सः अंत्यावयवी उच्यते। तो शरीर जो है यह किसी का अवयव नहीं होता, शरीर केवल अवयवी होता है, क्योंकि शरीर में अवयव होता है, शरीर किसी का अवयव नहीं होता। जैसे हाथ पांव सब अवयव हैं, किसके अवयव हैं, शरीर के अवयव हैं। तो जिस यस्य अवयवः स अवयवी उच्यते, जिसका अवयव होता है, जैसे शरीर का अवयव हाथ पांव है ना, तो शरीर जो है वह अवयवी कहलाएगा। तो अंत्यावयवी का मतलब हो गया कि जो किसी का अवयव तो न हो लेकिन अवयवी ही हो केवल, उसको हम अंत्यावयवी कहते हैं। यहाँ न्याय दर्शन के अनुसार एक बात आप जान लीजिए कि जो अवयव होता है ना वह किसी दूसरे द्रव्य का आरंभक होता है। अब जैसे मान लीजिए हाथ जो है वह अवयव है, तो हाथ उंगलियों का आरंभक होता है, माने हाथ से जो है उंगलियों का जन्म होता है। तो जो भी अवयव होगा वो किसी न किसी को जन्म देगा, किंतु जो अंत्य अवयवी होता है वह किसी को जन्म नहीं देता, वह किसी द्रव्य का आरंभक नहीं होता, ये भी एक बात है। लेकिन इस बात को जो है ना आपके यहाँ के ग्रंथ से बहुत लेना देना नहीं है। तो चलिए, शरीर के लक्षण में जो दो बातें बताई गई कि आत्मा के सुख दुख भोग का जो आयतन हो और जो अंत्यावय भी हो वह शरीर कहलाता है। अब इसके बाद सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग। अब भोग का आयतन शरीर होता है, तो सवाल होगा कि ये भोग किसे कहते हैं। तो आगे तो भोग का लक्षण बताते हैं कि सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार। सुख और दुख इन दोनों में से अन्यतर का, आपको पहले भी मैंने कभी बताया होगा कि जब दो में से एक को अलग करना होता है तो वहाँ तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है, और जहाँ बहुत में से एक को अलग करना हो वहाँ पर तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब जैसे यहाँ पर सुख दुख दो हैं, इसमें से एक ऐसा अर्थ कहना है तो यहाँ पर हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, इसलिए कहेंगे अन्यतर। लेकिन यहाँ सुख दुख के अलावे अगर कोई और तीसरा भी होता और उसमें से किसी एक को कहना होता, पकड़ना होता, तो वहाँ पर हम अन्यतम कहते, ठीक है। तो यहाँ पर सुख दुख अन्यतर, अन्यतर मतलब इन दोनों में से एक, चाहे सुख का चाहे दुख का। तो सुख दुख अन्यतर का जो साक्षात्कार है, अब ये साक्षात्कार क्या है, तो साक्षात्कार मतलब ऐसे तो आप लोग इंटरव्यू समझते होंगे, लेकिन साक्षात्कार का अर्थ जो है शास्त्र में इंटरव्यू नहीं होता, इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष अनुभव। तो सुख और दुख इन दोनों में से अन्यतर का, मान इन दोनों में से किसी एक का जो साक्षात्कार है अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव है, उस प्रत्यक्ष अनुभव को ही हम भोग कहते हैं। वह प्रत्यक्ष अनुभव कैसे होता है कि अहम सुखी अस्मि, ये है सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होना। अहम दुखी अस्मि, ये है दुख का प्रत्यक्ष अनुभव होना, ये है दुख का साक्षात्कार होना। क्लियर? तो ये भोग का लक्षण हो गया कि सुख दुखान्यतर साक्षात्कार भोग। अब भोगायतन शरीर को बताया गया था, तो अब उस भोगायतन की व्याख्या कर रहे हैं कि सौच, सौच माने भोगश्च, वह जो भोग है वह यदवच्छिन्न आत्मनि जायते, वह भोग यदवच्छिन्न आत्मा में जायते माने उत्पद्यते, वह भोग यदवच्छिन्न आत्मा में उत्पन्न होता है वह भोगायतन कहलाता है। यदवच्छिन्न शब्द के बारे में मैं आगे बताऊंगा। यदवच्छिन्न का सामान्य तो ये अर्थ हो गया कि ये न अवच्छिन्न आत्मनि, जिससे अवच्छिन्न आत्मा में वह भोग उत्पन्न होता है वह भोगायतन कहलाता है। अब शरीर से अवच्छिन्न आत्मा में भोग होता है, इसीलिए यद अवच्छिन्न में जो यत पद है उस यत का अर्थ होता है ये न, ये न के न, तो भोगायतन है न, भोगाश्रय है न, तो वह जो भोगाश्रय है वह अवच्छेदक होता है और आत्मा जो है वह अवच्छेद्य होता है। शरीर में और आत्मा में एक संबंध है, कौन सा, दो तरह का संबंध होता है, एक तो संयोग संबंध होता है, क्योंकि आत्मा जो है वह विभू है, विभू है मतलब सर्वत्र व्याप्त रहता है, और सर्वत्र व्याप्त रहेगा तो क्या होगा कि जितने भी द्रव्य हैं सभी द्रव्यों के साथ उसका आत्मा का जो है संयोग संबंध रहेगा। तो विभू होने के कारण आत्मा का सभी द्रव्य के साथ संयोग संबंध होता है, तो शरीर के साथ भी आत्मा का संयोग संबंध तो होगा ही। एक दूसरा भी संबंध होता है आत्मा और शरीर के बीच में, वो है अवच्छेद्यावच्छेदक भाव संबंध, उसमें अवच्छेद्य आत्मा होती है और अवच्छेदक जो है वह शरीर होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया यद अवच्छिन्न आत्मनि, अवच्छेद्य और अवच्छिन्न पर्यायवाची शब्द हैं, और यत जो होगा यहाँ पर वो कौन होगा, अवच्छेदक होगा, कि जिस अवच्छेदक से अवच्छिन्न आत्मा में भोग उत्पन्न होता है वह भोगायतन कहलाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जिस अवच्छेदक से अवच्छिन्न आत्मा में भोग उत्पन्न होता है वह अवच्छेदक भोगायतन कहलाता है। तो यहाँ यदवच्छिन्ने आत्मनि, तो इसका आपको अगर अर्थ समझना हो अपने समझने के लिए तो कह लीजिए शरीरावच्छिन्ने आत्मनि भोगः जायते, शरीर से अवच्छिन्न आत्मा में भोग जो है वह उत्पन्न होता है। अच्छा, तो ये भोग और जो अवच्छेदक होगा आत्मा का, उस तो अवच्छेदक से अवच्छिन्न आत्मा में भोग उत्पन्न होता है, तो वह जो अवच्छेदक है आत्मा का अवच्छेदक वही यहाँ पर भोगायतन कहलाता है, जिसका मैंने अर्थ बताया था प्रारंभ में कि भोग का जो आश्रय है, भोग का जो आधार है उसको हम भोगायतन कहते हैं। भोग का आधार कौन है, तो वह शरीर होता है। उसी को शास्त्रीय शैली में इन्होंने कहा कि सच यदवच्छिन्न आत्मनि जायते तद भोगायतनम, वह भोग जिस अवच्छेदक से अवच्छिन्न आत्मा में उत्पन्न होता है वह अवच्छेदक जो है भोगायतन कहलाता है। तदेव शरीरम, वह जो अवच्छेदक भोगायतन है उसी भोगायतन का नाम शरीर होता है। ठीक है, अब ये जो शरीर का लक्षण है ये हमारे आपके शरीर में के शरीर में तो ये लक्षण चला जाएगा, क्योंकि हमारा आपका शरीर जो है यह आत्मा का भोगायतन है। हम मेरे में रहने वाली जो जीवात्मा है वह जीवात्मा जो दुख सुख का भोग करती है, उस दुख सुख के भोग का आयतन आश्रय जो है वह हमारा शरीर है। तो इस तरह से हमारे आपके शरीर में तो ये लक्षण चला जाएगा, लेकिन ईश्वर के शरीर में ये लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर तो भोग करते नहीं है, ईश्वर को तो दुख और सुख का अनुभव होता नहीं है। तो न्याय दर्शन में कहा माना गया है कि ईश्वर का जो शरीर है वो परमाणु आत्मक होता है, ये जो परमाणु है ना वही ईश्वर का शरीर होता है। तो अब उस परमाणु में ये लक्षण जो है ये नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर माने आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा, तो परमात्मा जो है वह तो भोग करता ही नहीं है, तो परमात्मा के भोग का आयतन जो है को अगर हम शरीर मानेंगे तो फिर परमात्मा का जो शरीर है परमाणु रूप शरीर उसमें ये लक्षण नहीं जाएगा। इसीलिए अब दूसरा एक लक्षण बनाया इन्होंने शरीर के लिए, कहा कि चेष्टाश्रयो वा शरीरम, अथवा चेष्टा का जो आश्रय है उसको हम शरीर कहते हैं। अब ये वाला लक्षण जो है ईश्वर के शरीर में मतलब परमाणु में चला जाएगा, क्योंकि ये समझ लीजिए कि ईश्वर जो है जगत का निर्माण क्यों करता है, तो उसमें दो बातें होती हैं। ईश्वर जो जगत का निर्माण करता है कि जीवात्मा जो है उसके हित की सिद्धि हो और जीवात्मा के अहित का परिहार हो, अहित का निवारण हो, इसलिए ईश्वर जो है जगत का निर्माण करता है। और वो कैसे करता है, तो वह ईश्वर अपने शरीर में माने परमाणुओं में क्रिया को उत्पन्न करता है, और इसलिए ईश्वर के प्रयत्न से उत्पन्न होने वाली चेष्टा का आश्रय होने से परमाणु को ईश्वर का शरीर माना जाता है। तो यह जो है चेष्टा का आश्रय परमाणु है, तो परमाणु में भी ये लक्षण चला जाएगा माने ईश्वर के शरीर में, और हमारे आपके शरीर में भी ये लक्षण जाएगा। हम लोग जो चेष्टा करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब चेष्टाएं हैं, इन चेष्टाओं का जो आश्रय है वह हमारा शरीर तो है ही। इस तरह से दूसरा लक्षण जो बनाया वह ऐसा बनाया जो कि कॉमन है, हमारे आपके शरीर के लिए भी है और ईश्वर के शरीर के लिए भी है। अब इसमें चेष्टा का की सामान्य व्याख्या तो मैंने कर दी, लेकिन शास्त्र के हिसाब से चेष्टा किसे कहा जाता है, तो उसको आगे बताते हैं कि चेष्टा तो हित अहित प्राप्ति परिहारार्था क्रिया, चेष्टा किसको कहते हैं, तो हित की प्राप्ति के लिए जो क्रिया की जाती है उस क्रिया का नाम है चेष्टा, और अहित के परिहार के लिए जो क्रिया की जाती है उसे कहते हैं चेष्टा। तो हिता हित प्राप्ति परिहारार्था क्रिया चेष्टा, हित का संबंध लगाइए प्राप्ति के साथ और अहित का संबंध लगाइए परिहार के साथ। तो हित प्राप्त्यर्था क्रिया और अहित परिहारार्था क्रिया जो है वह चेष्टा है। हित की प्राप्ति के लिए जो की जाने वाली क्रिया को चेष्टा कहते हैं और अहित के परिहार के लिए किए जाने वाली क्रिया को हम चेष्टा कहते हैं। न तो स्पंदन मात्रम, कुछ दार्शनिक लोग जो हैं वो स्पंदन मात्र को क्रिया कहते हैं, स्पंदन कहते हैं कंपन को, तो कंपन मात्र को हम चेष्टा नहीं कहते हैं बल्कि हिताहित प्राप्ति परिहारार्था जो क्रिया है उसी को हम चेष्टा कहते हैं। और ऐसी चेष्टा जो है वह परमाणुआत्मक शरीर में भी होता है, क्योंकि जीवात्मा के हित की प्राप्ति के लिए और जीवात्मा के अहित के परिहार के लिए जो है परमाणुओं में चेष्टा होती है ईश्वर के प्रयत्न से, ठीक है, और उस चेष्टा का आश्रय वह परमाणु होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है शरीर का लक्षण इन्होंने बताया। अब आगे के पाठ में ये जो तीसरा प्रमेय है, जो जिन बारह प्रमेयों की मैं चर्चा करता हूँ, आत्मा शरीर इंद्रिय, तो तीसरा जो प्रमेय है इंद्रिय प्रमेय, उसके लक्षण के बारे में और उसके भेद के बारे में अगले पाठ में जो है हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम यही पाठ को स्थापित करते हैं।